माँ से बात करने के बाद अभिमन्यु खाना खाते हुए बोला, पता नहीं इप्सिता ने खाना खाया भी होगा या नहीं। वहाँ मुंबई में तो वो हमेशा हमारे साथ ही डिनर करती थी। डिनर क्या, हम लोग तो अपना ब्रेकफास्ट और लंच भी एक साथ ही करते थे। अभिमन्यु के दिमाग में यही बातें चल रही थीं, तभी उसके सामने इप्सिता की सारी वो यादें जो पिछले कुछ दिनों में उनके साथ हुई थीं उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। वो इप्सिता को याद करके मुस्कुराने लगा। उसने अपने मन में कहा, हम इप्सिता के बारे में सोचकर इतने खुश क्यों हो रहे हैं? अभिमन्यु ने खुद से ये सवाल किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इप्सिता के बारे में ये सब कुछ कैसे और क्यों सोच रहा है। वही इप्सिता भी बार बार अभिमन्यु के बारे में सोच रही थी। उसने अपने मन में कहा, एक काम करते हैं, अभिमन्यु को मैसेज करके पूछते हैं कि उन्होंने खाना खाया या नहीं। खुद से इतना बोलकर उसने अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और डाइनिंग टेबल के नीचे छुपाते हुए उसने बिल्कुल चुपके से अभिमन्यु को मैसेज किया। जैसे ही अभिमन्यु ने इप्सिता का मैसेज देखा, अभिमन्यु के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अपने मन में कहा, इसका मतलब हम ही नहीं, इप्सिता भी हमारे बारे में सोच रही हैं। हम दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। इसका क्या मतलब है? शायद हम दोनों को एक दूसरे की आदत हो गई है। अभिमन्यु ने इप्सिता के मैसेज का रिप्लाई दिया और इप्सिता ने जैसे ही उसका रिप्लाई देखा, वो धीरे से मुस्कुराई और अपना खाना खाने लगी। अभिमन्यु जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, उसने तुरंत इप्सिता को कॉल कर दिया। इप्सिता खाना खा रही थी और जैसे ही उसने अभिमन्यु का कॉल आते हुए देखा, सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। इप्सिता ने जल्दी से फ़ोन साइलेंट पर कर दिया। इप्सिता की माँ ने हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ, किसका फ़ोन है? इप्सिता ने कहा, किसी का नहीं मॉम, वो ऐसे ही, शायद कंपनी या किसी स्पैम कॉल का नंबर था। नंदिनी इप्सिता को उसके बहाना बनाने पर एकदम ही देखने लगी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि इप्सिता झूठ बोल रही थी। इप्सिता ने चुपचाप अभिमन्यु को मैसेज करते हुए कहा, सॉरी अभिमन्यु, हम अभी आपका फ़ोन नहीं उठा सकते, हम सबके साथ बैठे हैं, थोड़ी देर में हम आपसे बात करते हैं। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना फ़ोन साइड में रखा। नंदिनी इप्सिता को इस तरह अभिमन्यु को चुपके से मैसेज करते देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगी। तभी इप्सिता ने जल्दी से अपना डिनर फिनिश किया और वो टेबल से उठने ही वाली थी, तभी नंदिनी ने उसे रोकते हुए कहा, ईशु, तेरा डिनर हो गया? इप्सिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ हो गया, हम थोड़ा थक गए हैं इसलिए हम अपने कमरे में रेस्ट करने जा रहे हैं, गुड नाइट मम्मी पापा। नंदिनी भी उठकर उसके साथ बेडरूम की तरफ आते हुए बोली, मैं भी काफ़ी थक रही हूँ इसलिए चलो मैं भी सोने तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखा और वो दोनों चुपचाप बेडरूम में आ गई। इप्सिता बार बार अपने मोबाइल फ़ोन की तरफ देख रही थी। उसने अपने मन में कहा, अगर नंदिनी सोई नहीं तो हम अभिमन्यु से बात कैसे करेंगे? इप्सिता को इस तरह मोबाइल की तरफ देखकर और इतनी सोच में डूबा देखकर नंदिनी समझ गई कि ज़रूर इप्सिता को अभिमन्यु से बात करनी होगी। नंदिनी ने अपने मन में कहा, जब तक मैं जागती रहूंगी मुझे नहीं लगता ये जीजू से बात करेगी। एक काम करती हूँ, मैं सोने का नाटक करती हूँ ताकि मेरे सोते ही ये जीजू से बात करे और फिर बाद में मैं इसे जीजू का नाम लेकर छेड़ूंगी। नंदिनी के मन में जैसे ही ये शरारती आइडिया आया, वो बहुत ही खुश हो गई और उसे ये आइडिया इतना ज़्यादा पसंद आया कि उसने उबासी लेते हुए कहा, ईशु, मुझे ना नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ, तो प्लीज़ सोते टाइम लाइट्स ऑफ कर देना। नंदिनी की ये बात सुनते ही इप्सिता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आई और उसने जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ ठीक है, तुम आराम से सो जाओ, हम लाइट्स ऑफ कर देंगे। नंदिनी ने बेड पर आराम से लेटकर करवट ली और वो बिना कुछ बोले चुपचाप अपनी आँखें बंद करके लेट गई। इप्सिता ने नंदिनी को इस तरह सोते देखकर कुछ देर तक इंतजार किया और फिर उसने नंदिनी के कान के पास जाकर धीमी आवाज में कहा, नंदिनी, तुम जाग रही हो या सो गई? नंदिनी ने इप्सिता की बात सुनी लेकिन उसने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया ताकि उसे ऐसा लगे कि वो सो गई है। नंदिनी का ये आइडिया काम भी कर गया, वो बस मुंह पर हाथ रखकर बिना कोई आवाज किए हंस रही थी। इप्सिता ने नंदिनी की तरफ देखते हुए अपने आप से कहा, ये तो सो गई, अब हम अभिमन्यु से बात कर सकते हैं। इप्सिता ने तुरंत अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और वो अभिमन्यु को कॉल करने लगी। अभिमन्यु जो आराम से अपने कमरे में अकेले बैठा था, उसने जैसे ही इप्सिता का फ़ोन आते हुए देखा, वो थोड़ा उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से इप्सिता का कॉल पिकअप करते हुए कहा, हेलो, आप सोई नहीं अभी तक? इप्सिता ने अभिमन्यु की आवाज़ सुनकर धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी नहीं, अभी तो हमने थोड़ी देर पहले डिनर किया है और आपने अचानक से इस तरह डिनर के टाइम पर कॉल कर दिया था, तब वहाँ पर हमारे साथ सब बैठे थे इसीलिए हम आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाए, हमने सोचा अब जब अपने कमरे में आ गए हैं तो हमने सोचा आपसे थोड़ी बात कर लें। अभिमन्यु ने कहा, ओह तो ये बात थी, हमें लगा शायद आप हमसे बात नहीं करना चाहती इसीलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी, वैसे आप सबके सामने भी तो हमसे बात कर सकती थी ना? इप्सिता उसकी ये बात सुनकर बड़ी ही हैरानी से बोली, नहीं, हम सबके सामने आपसे कैसे बात कर सकते हैं भला? अभिमन्यु उसकी बात सुनकर अपनी भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्यों, क्यों नहीं कर सकती हैं? वैसे भी हमारी तो सगाई हो चुकी है और अब तो जल्द ही हमारी शादी भी होने वाली है, तो फिर क्यों नहीं? इप्सिता ने कहा, हम सबके सामने अभी इस तरह आपसे बात करने में कम्फर्टेबल नहीं है और वैसे भी अगर हम आपसे सबके सामने बात करेंगे तो पता नहीं मम्मी पापा क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अभिमन्यु इप्सिता से ये सारी बातें इस तरह से बोल रहा था जैसे मानो उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। इप्सिता अभिमन्यु से ये सारी बातें बड़े ही धीमी आवाज में बोल रही थी। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर बोला, वैसे आपके घर में शादी की तैयारियां कैसी चल रही हैं? इप्सिता ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, अभी तो हमने मम्मी पापा से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा और हम आज ही घर आए थे तो उन लोगों ने भी हमसे कुछ नहीं कहा। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनकर उसे बताया, यहाँ राजमहल में तो बड़े जोरों शोरों से सब चीजों की तैयारी हो रही है। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि माँ ने हमारी गैर मौजूदगी में इतनी सारी तैयारी कर ली होगी। उनका बस चले तो कल ही हम दोनों की शादी करवा दें। इप्सिता ने अभिमन्यु की बातें सुनी और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसे थोड़ी शर्म भी आ रही थी, साथ ही उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पर वो क्या बोले। इप्सिता घबराते हुए बोली, हम आपसे बाद में बात करते हैं, गुड नाइट। इप्सिता को इस तरह कॉल डिस्कनेक्ट करते देखकर अभिमन्यु ने कहा, अब इन्हें क्या हो गया? तभी नंदिनी उठकर बैठी और उसने इप्सिता की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, इस तरह चुपके चुपके किससे बात हो रही है मैडम? इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर सकपका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी बात का क्या जवाब दे। तभी उसने कहा, वो एक्चुअली हम बस। नंदिनी इप्सिता को इस तरह हकलाते देखकर हंसने लगी और उसके बिल्कुल बगल में आकर इप्सिता को साइड हक करते हुए कहा, सबसे बड़ी इडियट है, अपने होने वाले पति से ही तो बात कर रही थी तो फिर इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? और मैं तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुझे मुझसे ये सारी बातें छुपाने की जरूरत नहीं है। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर थोड़ी सी शर्मा गई। तभी नंदिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा, वैसे जीजू से बात करते टाइम तेरे चेहरे पर अलग ही ब्लश नजर आता है, तुझे पता है ना?
इप्सिता ने उसकी यह बात सुनकर अपनी नज़र दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और हमें पता था तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी, बस इसीलिए हम तुम्हें कुछ नहीं बताते हैं। तुम हमारा सपोर्ट तो करती नहीं हो और बस ऐसे ही हमें छेड़ने लग जाती हो। इप्सिता की ये बात सुनकर नंदिनी ने उसके गाल खींचते हुए कहा, अच्छा बाबा ठीक है, अब नहीं छेड़ूंगी मैं तुझे, बट तू मुझे ये सारी बातें छुपाया मत कर यार। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब तुम दोनों इस तरह लवर की तरह बातें करते हो। सच में ईशु, तू बहुत लकी है जो तुझे अभिमन्यु जैसे जीजू मिल रहे हैं। इप्सिता नंदिनी की बात सुनकर कुछ सोचने लगी और उसकी आंखों के सामने वो सारे पल याद आने लगे जो उसने और अभिमन्यु ने अब तक एक साथ बिताए थे, खासकर मुंबई में इतने दिन जब वो अभिमन्यु के साथ रही थी। सच में उसे भी एहसास हुआ था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। नंदिनी ने उसके चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गई, फिर से तुम जीजू के बारे में सोचने लगी क्या? इप्सिता ने काफी ज्यादा परेशान होते हुए अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अरे नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा और हम तो बस अपने मम्मी पापा के बारे में सोच रहे हैं। जब से आए हैं उन लोगों ने अब तक शादी को लेकर कोई भी बात नहीं की, पता नहीं कौन सा बम फोड़ने वाले हैं। नंदिनी ने उसकी बात सुनकर कहा, अरे कोई बम नहीं फोड़ेंगे अंकल आंटी भी, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा है। तुम बेकार में ही हर चीज़ की कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेती हो। इतना बोलकर नंदिनी ने इप्सिता का हाथ पकड़ा और उसके सिर से उसका हाथ हटाते हुए कहा, तुम इन सारी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो और चलो चुपचाप लेट जाओ और सोने की कोशिश करो, सुबह जो होगा देख लेंगे। नंदिनी की बातें सुनकर इप्सिता ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी हमें भी नींद आई रही है, इतना थके हुए हैं, शायद इसीलिए ही मम्मी पापा ने कुछ नहीं कहा होगा, वैसे तुम ठीक कह रही हो। नंदिनी ने इप्सिता को चिढ़ाते हुए उसके ही अंदाज में बोला, हम हमेशा ही ठीक कहते हैं और तुम्हारी तरह एक्स्ट्रा सोचते भी नहीं है, तुम भी हमारी तरह ही रहा करो, कुछ तो सीखो। उसके ऐसा करने पर इप्सिता ने गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखा और बोली, नंदिनी की बच्ची, हमें चिढ़ा रही हो ना तुम, तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। इतना बोलकर इप्सिता आगे आई और उसने बेड पर पड़ा हुआ तकिया उठा लिया और नंदिनी तुरंत ही बेड की दूसरी साइड से उतर गई। अपने चेहरे के सामने हाथ करते हुए बोली, अरे मैं बस मजाक कर रही थी यार, क्या तू भी सीरियस हो जाती है? मुझे भी पता है तू मेरी तरह कभी नहीं बन सकती, तू ऐसे ही अच्छी है, मेरी बेस्टी, वर्ल्ड बेस्ट है। इतना बोलते हुए उसने इप्सिता को रोकने की कोशिश की और इप्सिता ने वो तकिया जानबूझकर उसके साइड में फेंक दिया और फिर वो बेड पर बैठ गई और बोली, अच्छा ठीक है चलो सो जाओ, वैसे भी हम नाराज़ नहीं हैं तुमसे, क्योंकि तुम और तुम्हारी फालतू बातों की वजह से ही तो हम थोड़ा सा खुश रहते हैं। क्रमशः